VOA News, I'm Gene Randall. U.S. Secretary of State Mike Pompeo, a short time ago, witnessed the signing of a history-making peace agreement with the Taliban in Qatar. It is aimed at ending the war in Afghanistan. This after a week-long U.S.-Taliban accord on a reduction of violence. The deal calls for the U.S. to reduce its troop level in Afghanistan from 13,000 to about 8,600. In Brussels, NATO Secretary General Jens Stoltenberg called today's event a necessary move toward peace.
This will be only the first but very important first step towards a lasting peace agreement in Afghanistan.
Stoltenberg said the only permanent solution is a peace process involving the Taliban and the Afghan government. Direct talks between the two sides are tentatively scheduled to begin within 10 days. Under the agreement, Afghanistan is to release 5,000 jailed Taliban prisoners, while the insurgents are forbidden to allow extremists to launch attacks against America or its allies from Afghan soil. The war in Afghanistan is more than 18 years old, the longest armed conflict in U.S. history. Fears over the coronavirus outbreak are spreading rapidly as many countries, including Africa's densely populated Nigeria, encounter their first cases of the COVID-19 infection. Here's AP correspondent Sagar Magani.
The World Health Organization has boosted its risk assessment of the virus spreading worldwide
to very high at global level,
with the number of nations hit nearing five dozen.
The first case of coronavirus disease in confirmed in Nigeria.
It's now reached sub-Saharan Africa. Mexico, New Zealand, and Iceland are among other nations reporting their first cases, some appearing with no obvious source. With governments scrambling to contain the virus, the health crisis is turning into an economic one, with travel warnings, factory shutdowns, and event cancellations.
The Geneva International Motor Show n'aura pas lieu,
including one of the car industry's showcase events. Sagar Magani, Washington.
From Washington, this is VOA News. More refugees and migrants have been gathering near Turkey's border with Greece today as they try to escape deadly airstrikes by government forces in Syria. There have been some scuffles with Greek border guards, including the use of tear gas. The European Union has warned that the fighting in northern Syria could escalate into open war between Turkish and Russian-backed Syrian forces. 33 Turkish soldiers in Syria were killed in airstrikes this week. The U.S. Food and Drug Administration is warning that coronavirus could play havoc with the supply of vital drug supplies from China. AP correspondent Jackie Quinn reports.
China is the second largest drug producer for the United States, so federal regulators checked for supply chain disruptions. They've identified 20 drugs produced or sourced exclusively from China, which could run short. The FDA is not naming the drugs to prevent panic buying, and regulators are emphasizing that alternative medicines are available. China's a major producer of antibiotics for the U.S. market, as well as heart disease medications. It also makes medical devices, although no shortages have yet been announced. Jackie Quinn, Washington.
Fitting an increasing global pattern, sources say the United States is postponing a meeting with Southeast Asian leaders, which it planned to host on March 14th. President Trump had invited the ASEAN nations to meet in Las Vegas until coronavirus fears stepped into the picture. Mr. Trump failed to attend a summit with the group in Bangkok in November. Voters in South Carolina are casting ballots in a Democratic Party presidential primary, a dramatic run-up to next week's crucial Super Tuesday marathon of balloting in 14 states. Former Vice President Joe Biden has stumbled badly in three primary season contests so far. An expert opinion is that he needs a strong win in South Carolina to sustain his campaign. Here's the AP's Jennifer King.
For the Democrats, it's crunch time with nearly two-thirds of the delegates up for grabs in a 30-day period, including South Carolina and 14 states and American Samoa on Super Tuesday next week. Bernie Sanders leads the delegate count.
We're going to win this campaign.
While Joe Biden is looking for a rebound in South Carolina that could propel his campaign forward, he was among the candidates who criticized President Trump's handling of the new coronavirus outbreak.
Like the rest of us, this virus is not impressed by his tweets.
Pete Buttigieg spoke to supporters in Charleston.
We are poised to make history.
Amy Klobuchar stumped in several different states while Elizabeth Warren encouraged supporters to go door-to-door in Greenville, South Carolina.
That is what it is going to take.
Mike Bloomberg campaigned in Tennessee, trying to attract voters disenchanted with the current choices.
No state is too red for the Democratic Party, and no voter is too liberal or too moderate or too conservative.
I'm Jennifer King.
Gene Randall, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। भारत के दारुलहुकूमत नई दिल्ली में फसादात और इंसानी हकूक के इदारों की जिम्मेदारी, दुनिया में जमहूरी और बुनियादी इंसानी हकूक और वर्ल्ड आर्डर, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, कोरोना वायरस से आलमी मईशत को लाहक खतरात, और स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग 5 जो कि सीजन जारी है उस पे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।
सामिन, आप जानते हैं कि भारत दारुलहुकूमत नई दिल्ली में इस वक्त मुतनाज़े शहरियत के बिल पे होने वाला एहतजाज नस्ली फसादात में तब्दील हो गया, और जुमेरात को जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक कम से कम 27 अफराद लुकमा अजल बने हैं, 200 से ज़्यादा जख्मी बताए जाते हैं। सो, हमने इस पस मंज़र में बात की है ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया चैप्टर की डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली से, और उनसे मालूम किया है कि इंसानी हकूक और ख़ासतौर पर HWR जैसे इदारे, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, भारत की हुकूमत पर कितना दबाव है और या कितना उसको दबाव लेना चाहिए, जो अमन की बात करने वाले लोग हैं, भारत की जो सिविल सोसाइटी से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो नई दिल्ली को किस हद तक मुतासर कर रही हैं या वो नई दिल्ली उन आवाज़ों को सुन पा रही है। सो आए बात करते हैं मीनाक्षी गंगुली से।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।
मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया।
सबसे पहले तो आप एक राइट एक्टिविस्ट भी आप हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर की हैसियत से बताइए कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, खासतौर पे पिछले चंद महीनों से जो कुछ हो रहा है।
जी, भारत में जो अभी हुआ है वो ये है कि एक नया लॉ बनाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहके। इस लॉ के अंदर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध और पारसी, उनको इन तीन मुल्कों में से जो ये वाले रिलीजन के लोग हैं उनको फास्ट ट्रैक पे सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये कानून बना था। अब इस कानून में हम, क्योंकि भारत में कोई मजहब के हिसाब से कोई डिफरेंसेस नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया था, वो एक अजीब बात थी, उसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया। दूसरी बात ये था कि सिर्फ इन तीन मुल्कों में क्यों, कि सिर्फ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्यों, बाकी जो लोग हैं जैसे कि बर्मा हो जहाँ से रोहिंग्या आए हुए हैं, या श्रीलंका हो जहाँ से तमिल आते हैं, उनका क्या होगा, इसके लिए अपोजिशन हुआ। लेकिन उसके बाद में और भी बात बढ़ी, क्योंकि जब ये इसके बाद में सरकार ने ये कहा कि हम सिटीजनशिप की वेरिफिकेशन प्रोसेस भी चालू करेंगे, फिर इस लॉ के साथ जोड़ के अगर वो देखा जाए तो फिर जो भारत के मुसलमान हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है कि वो अपना सिटीजनशिप कैसे साबित करें।
सही।
इन दोनों चीजों के लिए काफी प्रोटेस्ट हुआ है, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, आम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, मुस्लिम ने प्रोटेस्ट किया, और मुस्लिम की सबसे बड़ी जो बात थी वो ये था कि मुस्लिम वेमेन बाहर आई और उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया इस पूरे जो CAANPR NRC का जो एक बात चलता है उसके लिए।
ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंस में कैसे तब्दील हुए, और खासतौर पे दिल्ली के अंदर ये वायलेंस जो है वो कम्युनल वायलेंस में कैसे तब्दील हुआ?
जी, ये जो BJP जो है, इनका जो एक आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हिंदू मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी है, और इसके इस पार्टी के जो सपोर्टर हैं, लीडर हैं, ये कई बार मजहबी तरफ से कम्युनल बातें करते हैं। तो फिर जो ये प्रोटेस्ट थी ये बिल्कुल ये पीसफुल थी, लेकिन इसके बाद इनको जब अपोज किया जाता था तो फिर कई समय इनको ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स के बारे में जो निंदा होती थी कि आपने सड़कों पर सड़कें बंद करी या कुछ कर लिया है, उसके लिए उन्होंने वो इन प्रोटेस्टर्स को काफी जैसे एंटी नेशनल या कहा कहते थे। एक तो वो था, दूसरा ये देखें कि दिल्ली पुलिस जो थी जो है वो कई बार पार्टीजन हिसाब से काम कर रही थी, तो जो गवर्नमेंट के जो प्रो गवर्नमेंट सपोर्टर थे जो अगर वो प्रोटेस्ट करते थे उनका साथ देते थे, पर अगर वो एंटी गवर्नमेंट वाले सपोर्ट थे उनका ना साथ।
तो मीनाक्षी जी, यही तो सवाल है, तो ये जो रियासत की या जो स्टेट की मशीनरी है वो अपने आप को गैर जानेबदार क्यों नहीं रख सकी है?
अब हम ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो जो पुलिस है वो किस तरह से एक 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 तरफ की तरह ज्यादा जा रही है, और इसका हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपना प्रेशर देते हैं, लेकिन जो पुलिस है वो एक पब्लिक सर्विस है, उनको हर वक्त नॉन पार्टीजन होना चाहिए, उनको उनमें कोई प्रेजुडिस या बायस जो होता है वो अपनी पर्सनल बायस जो भी हो, लेकिन या पर्सनल जो भी आइडियोलॉजी हो, जिस वक्त वह वर्दी पहनता है फिर उसका सिर्फ एक ही कमिटमेंट रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहता है।
सही, और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। अब ये बताइएगा कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे, एक ऑब्जर्वर के तौर पे आप क्या देख रही हैं कि भारत में इस वक्त मजहबी आज़ादियों की या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, क्या उसके अंदर रियासत बेबस है या रियासत की कहीं मदद है जो लोग उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, उनकी हिमायत हासिल है उन्हें?
हमें ये बहुत अजीब लग रहा है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो जब माइनॉरिटीज के ऊपर, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करते हैं, तो उनके साथ में कहीं से कहीं जो लॉ, रूल ऑफ लॉ है वो नहीं होता है। और ये सिर्फ इस बार नहीं देख रहे हैं हम ये काफी दिनों से देख रहे हैं। पहले भी जब हुआ था, जब ये लिंचिंग करके एक बार एक दौर चला था जहाँ पे बीफ के ऊपर, क्योंकि ये लोग कहते थे कि जो मुस्लिम हैं या दलित हैं, जो लेदर पे काम करते हैं या बीफ पे काम करते हैं या ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनके ऊपर अटैक होता था। तो फिर जो लोग अटैक करते थे वो कहते थे वो बीजेपी के सपोर्टर है, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता था ठीक से, उनको क्यों नहीं ठीक से प्रोसिक्यूट किया जाता था? ये हमने पहले भी देखा था, अभी भी हमारी यही चिंता है, क्योंकि अभी जो दिल्ली में वायलेंस हो रहा है वो एक तरफा नहीं है, पर जहाँ पे जो मुस्लिम के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद में, तो पहले जो हुए थे वो दंगे थे, उसके बाद में जो अभी जो हुआ है वो अटैक हुआ है, जहाँ पे मस्जिदों पे अटैक हुआ है, बिजनेसेस पे अटैक हुआ है। तो फिर हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी पुलिस एक्शन ले, सरकार गवर्नमेंट एक्शन ले, और ये देखा जाए कि जो लोग अब खुद को बीजेपी के सपोर्टर समझ के, ये क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो ये समझते हैं कि उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा ना हो और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
मीनाक्षी जी, आपकी तरफ से ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, बाकी इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स, इवन जो रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स में पिछले साल यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की, सब में भारत के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं बताई गई है। तो क्या भारत आपकी आवाज़ को सुन रहा है, इंटरनेशनल राइट्स एक्टिविस्ट की और ऑर्गेनाइजेशन की वो बात सुन रहा है, लोकल अपनी सिविल सोसाइटी की आवाज़ सुन रही है भारत की हुकूमत?
भारत की हुकूमत जरूर चाहती है कि इंटरनेशनली भारत को रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा इकोनॉमी है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो वो बहुत वो भारत को ये याद दिलवाए कि जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिसके लिए भारत का जो पहचान है वो सब मानते हैं, वो जमहूरियत में एज फॉर सेक्युलर आइडियोलॉजी जो भारत का था वो प्रिजर्व हो, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो सिविल सोसाइटी के लिए स्पीच है, जो मीडिया के लिए स्पीच है, ये सारा प्रोटेक्ट हो, ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट की तरफ ही बात करते हैं उन्हीं की बात सुनी जाए और दूसरी तरफ की ना सुनी।
क्या भारत या भारत की इस वक्त जो हुकूमत है, मैं अगर रियासत का नाम ना भी लूँ स्टेट का, तो क्या वो अपनी जो आइडेंटिटी है एक सेकुलर रियासत से उसको यकसर तब्दील करना चाहते हैं? कोई शौरी कोशिश, कोई इंटेंशनल एफर्ट भी नजर आती है कि बेशक हमें कोई ना कहे सेक्युलर, वी आर एक नेशनलिस्ट इंडिया,
लेकिन सेक्युलरिज्म तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो आइडियोलॉजी जो है वो भारत की, जो जब भारत बना था तो वो दैट भारत इज अ सेक्युलर नेशन बना था, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स है वो कई बार वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही दोहराते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के गवर्नमेंट को बताते हैं कि देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसी की तरह आपको ये याद दिलवा रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब नहीं अलाउ करता है।
मीनाक्षी गंगोली साहब हमारे साथ हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की डायरेक्टर एशिया चैप्टर की। गंगोली साहब, ये बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक बड़ा इदारा है, बड़ा नाम है, वो इस इशू पे क्या रिपोर्ट कर रहा है?
जी, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम लोग गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, और हमारी जो रिकमेंडेशन देती हैं वो हम गवर्नमेंट को देते हैं।
और उन रिकमेंडेशन या उन रिपोर्ट्स के बारे में कितनी सेंसिटिव है हुकूमत?
कई समय नहीं रहती है जब, और से हमको ये कहती है कि हम ऐसा क्रिटिसाइज ना करें, जैसा जैसा बाकी जगह पे हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी की तरफ इंडियन अथॉरिटीज की थोड़ी अभी क्रिटिक्स की तरफ ज्यादा वो पसंद नहीं करते हैं क्रिटिसिज्म, तो हमारे से भी वो क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी गंगोली, डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया चैप्टर, आप हमारे साथ नहीं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन। बात हम कह रहे हैं भारत में नस्ली फसादात के ऊपर। बदकिस्मती से यहाँ नस्ली फसादात की एक तारीख है। सिख कम्युनिटी हो, दलित हो या मुसलमान अकलियतें हों, उनको चैलेंजेस का सामना मुख्तलिफ अवकात में रहा है। आज जब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है और दुनिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक एक तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी दुनिया जिस निज़ाम पे खड़ी है या दुनिया जिस निज़ाम को कबूल करते हुए जिन वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है वो जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक है, मजहबी आज़ादियां हैं, लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डर किस हद तक उस पर इतलाक हो रहा है। अगर कोई बड़ा मुल्क हो, अगर किसी मुल्क के साथ दुनिया के बड़े मुल्कों के मुआशी मफादात वाबस्ता हों, मंडियों तक रसाई चाही जा रही हो, सो उस सूरत में भी क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। इस सवाल का एक और भी पस मंज़र है कि ऐसे वक्त में नई दिल्ली में ये फसादात सामने आए जब वहाँ पे सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर रहे थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका के अंदर से उनके सदारती इलेक्शन में एक जो मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी की दौड़ में शामिल हैं, बर्नी सैंडर्स, उन्होंने अपने एक ट्विटर मैसेज में उन पर तनकीद भी की है कि वो वहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सके हैं जब वहाँ पे एक 200 मिलियन अफराद की जो एक अकलियत है, यानी तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबादी है, वहाँ पे उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही थी और उनकी हलाकतें हो रही थी, इस पे उन्होंने उन पे तनकीद भी की है। तो इस बैकड्रॉप में हमने ये सवाल किया है अपने पैनलिस्ट से कि वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ एग्जिस्ट करता है। प्रोफेसर वकार अहमद नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा भारत के अंदर नस्ली फसादात के ऊपर एक तफसीली तहकीकी मकाला लिख चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सैयर खान खेटो इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन बेस्ड, उनसे हमने बात की है। और डॉक्टर प्रोफेसर रसूल बख्शी साहब मुमताज पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनसे हमने बात की है। आइए उनकी राय जानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले प्रोफेसर वकार अहमद, प्रोफेसर वकार अहमद साहब आप इसी पे अब अपनी राय दीजिएगा।
जहाँ तक आपने जो वर्ल्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है इस वक्त। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता ही नहीं है ब्रेक्सिट की वजह से और डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन की वजह से लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो कहना कि वो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी बिफोर लॉ और हर मजहब का इक्वल पोजिशन, पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप इस्लामोफोब है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप की और सऊदी अरब टर्की से भी ठीक ठाक ही रिलेशन है। पर्सनल लेवल पे कुछ कटपट थोड़ा बहुत हो सकता है पर ऐसी कोई मेजर दुश्मनी नहीं है। ऐसा कोई ब्लड फ्यूड नहीं है पर लिबरल ऑर्डर स्टैंड नहीं करता और पर्सनल मामला भी है। जैसे ओबामा को बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलता था पूरी दुनिया में, ट्रंप को नहीं मिला, इंडिया में मिला है पहली बार। मोर देन 100,000 लोग जो हैं वो स्टेडियम में मोदी ने इकट्ठा कर दिया ट्रंप को, तो उनके लिए बहुत फक्र बात हुई ट्रंप के लिए, तो उन्होंने काफी इंजॉय किया, तो थैंक यू कह रहे हैं एक तरह से। तो वो तो बात उठाएंगे नहीं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। और अमेरिका में इंडियंस जो हैं वो बहुत रईस कम्युनिटी हैं, तो ट्रंप ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में अच्छी डोनेशन मिल सकती है। ट्रेडिशनली इंडियंस जो है हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट किए, तो शायद रिपब्लिकन्स को वोट करें बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। हालांकि इलेक्टोरली बहुत डिफरेंस मेक करेगा ये शायद नहीं लगता, पर शायद मॉनेटरीली अगर कुछ पैसे इलेक्शंस की तरफ जाए तो वो शायद फायदेमंद हो सकता है। तो ये कैलकुलेशंस बट मोस्टली एक इज्जत की बात है कि एक 100,000 लोग जो हैं स्टेडियम में उन्हें वेलकम करने आए दुनिया में और कहीं ऐसी
रिसेप्शन नहीं मिली है। एक एक मिनट में डॉक्टर सुलभ शाही साहब आपको और डॉक्टर सैयद खान साहब आपको देना चाहूँगा कि इटसेल्फ क्या वर्ल्ड ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो क्या वो लिबरल है, क्या वो बिल्कुल ही किसी एक इकाई के मफाद के ऊपर बेस्ड है, या दुनिया में मुख्तलिफ चूँकि ताकत के मराकज बन चुके हैं तो अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। डॉक्टर सैयद,
मेरे ख्याल में लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो खत्म तो नहीं हो चुका कम्प्लीटली, लेकिन डेफिनेटली उसमें टेंशन है और वो कमजोर होता जा रहा है। लेकिन लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के भी दो हिस्से हैं, एक तो इकोनॉमिक हिस्सा है जो अभी कायम है वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू, और एक जैसे एक सियासी हिस्सा है जिसमें जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी प्रमोशन को किया गया है। अब आई थिंक चैलेंज ये है कि जो जैसे जैसे लोग जैसे वजीर आजम मोदी और सदर ट्रंप जैसे लोग इलेक्ट हुए हैं और हम दुनिया में देखते आ रहे हैं कि जैसे एक राइट विंग पॉपुलिज्म जो है वो बढ़ती जा रही है, तो आई थिंक चैलेंज लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का ये है कि ये कैसे हुआ है डेमोक्रेसी को और इस तरह की चीज़ों को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये भी चीज़ भूलनी नहीं हमें चाहिए कि हिटलर जैसे लोग जो थे वो इलेक्ट हुए थे, तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इकोनॉमिक हिसाब से लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एज सच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली कमजोर है और डेफिनेटली वॉशिंगटन DC में तो बहुत बातचीत हो रही है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कि अब अमरीका की ताकत कैसी है और अमरीका को भी कैसे अपने आप को बदलना चाहिए अहम रहने के लिए इस चेंजिंग ऑर्डर में।
डॉक्टर रसूल बख्शी साहब, लास्ट मिनट वर्ल्ड लिबरल वर्ल्ड,
इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दे सकते कि कौन सा कैसा है, लेकिन यह है कि उसमें सारे रंग मौजूद हैं और देखा जाता है कि जो गालिब रुझानात हैं इस वक्त क्या है, और वो देखते हैं कि आलमी तौर पर तो देखते हैं कि रियासतों के अंदर किस किस्म की जो पोलिटिकल इकानमी है वो तरतीब दी जा रही है। तो अभी तक तो वो न्यू लिबरलिज्म ही है कि जी मार्केट फोर्सेज और प्राइवेटाइजेशन, बड़ी बड़ी जो हमारी रियासतें हैं चीन है हिंदुस्तान है तक की जो ममालिक में वो ये नज़रिया अख्तियार कर चुके हैं, तो जो बाकी नज़रियात थे वो इतना गालिब नहीं रहे। लेकिन ये नहीं है कि लिबरलिज्म खत्म हो गया, लिबरलिज्म की एक फॉर्म है
वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर जो बेसिकली जिसको जिसको कहना चाहिए चैंपियन करता है।
वर्ल्ड ऑर्डर में देखिए कि मैं नहीं समझता कि आप जो जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनको आप इस वक्त जा सकते हैं कि देखो वो लिबरल नहीं है, तो उसमें शेयर है और दोनों पाचों में अमरीका हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन या बरतानिया में या जर्मनी में हर जगह के ऊपर चेंज इस वक्त यह है कि जो जरा कदामत पसंद तबकात हैं उनको और कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से वतन पस्ती के हवाले से वो ज़्यादा गालिब नज़र आते हैं।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श शाही साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर सैयद खान सीनियर रिसर्च फेलो विद केटो इंस्टीट्यूट हमारे साथ थी, आपका भी बेहद शुक्रिया, और प्रोफेसर वकार अहमद नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी से आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जनूबी एशिया बिलखसूस पाकिस्तान अफगानिस्तान उस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी जो कम्यूनिटी है बैन अल-अक़वामी फोर्सेज है उसके किरदार के ऊपर। सामिन, जब आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तब गालिब इम्कान है कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हो चुका होगा, उसकी क्या निटिग्रिटीज़ हैं, क्या उसकी तफसीलात हैं, किन शराइत पे इत्तेफाक हुआ है, इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मालूम नहीं है, लेकिन पीस जो है वो बहुत ज़रूरी, अमरीका भी ये चाहता है और अफगान तालिबान भी इसी तरह का इंतजार दे रहे हैं, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज वो भी पीस ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि अफगानिस्तान के अंदर उसके लिए वो अपनी कोशिशों को बावर कराते रहते हैं। हमारे साथ हैं दुर्दाना नजम, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और आज उन्होंने इसी मौजू के ऊपर एक कॉलम भी लिखा है डिफीटिंग टेररिज्म, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान की फ़ौज उसके किरदार को सराहा गया है, और ये अप्रिसिएशन सिर्फ इंटरनली नहीं है बल्कि यूनाइटेड नेशन کے جنرل سیکرٹری جنہوں نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا وہ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں. دردانہ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پچھلے 20 سال سے بالخصوص اس خطے کو, پاکستان کو, افغانستان کو ایک شدت پسندی کا, ٹیررزم کا سامنا ہے. کتنا اس کو کرب کیا گیا ہے ان پچھلے 20 برسوں میں, اگر ہم پہلے پاکستان پہ نظر ڈالیں تو؟
دیکھیے 20 برسوں میں تو کرب تو نہیں کیا گیا, 20 برسوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں 20 برسوں میں سے ایک بہت بڑا عرصہ ایسا تھا جس میں دہشت گردی شروع ہوئی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں 9/11 سے شروع کرتے ہیں نا, بیسیکلی ٹیررزم جو ہے اس کا آغاز, اگر آپ کہہ لیں کاؤنٹر ٹیررزم کا جو آغاز ہے, ٹیررزم کو سمجھنے کی جو ایکسرسائز ہے, وہ 9/11 کے بعد شروع ہوئی. اور وہیں سے ہمارا بھی جو جرنی ہے شروع ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی. شروع میں آبویسلی ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا, آپ جانتے ہیں امریکہ کے جو مقاصد تھے جو افغانستان میں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے, جو اب ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ بیسیکلی طالبان کو ہٹانا اور افغانستان میں اپنی جگہ بنانا اور پھر اس افغانستان ہی کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کرنا. اور اگر چائنا نہ ہوتا تو شاید صورتحال امریکہ بالکل ہی شاید قابض ہو چکا ہوتا انڈیا کے ساتھ کلیوٹ کر کے. تو خیر وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بہرحال وہاں سے ہم اگر سفر آپ دیکھتے ہیں تو, لیکن پاکستان میں ہمیں اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے کہ شروع میں بہت ریلیکسیشن ان دا سینس اس طرح سے دکھائی کہ ایک پولیٹیکل ول جو تھی وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی تھی کہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں. پھر آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ہم نے مختلف آپریشنس کیے, مشرف نے بھی کیے تھے, ساؤتھ وزیرستان میں کیا, ساؤتھ وزیرستان میں اس نے کافی آپریشنس کیے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے آپریشنس ہوئے, پھر ایک بہت بڑا آپریشن ہوا جو ہم سوات آپریشن میں ہوا تھا, وہاں سوات کو کلین اپ کیا گیا. اس طرح کے مطلب بار آپریشنس ہوئے. لیکن پھر ہم, پھر آپ کو اگر یاد ہوگا کہ شور یہ بچایا جاتا تھا یا مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ اصل میں خرابی نارتھ وزیرستان میں ہے, اس کو صاف کریں. لیکن اس کی پولیٹیکل ول پھر نہیں تھی. کیانی کے دور میں کیانی کو 2 دفعہ ایکسٹینشن بھی ملی, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کی کیا وجوہات تھیں. کیانی نے بھی کبھی یہ اسٹیپ نہیں دیا کہ یہ وڈ ہیو گون اوے آؤٹ اور نارتھ وزیرستان کو وہ ٹارگٹ کرتے. لیکن اس کے بعد جب راحیل شریف آئے ہیں, دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ راحیل شریف کے آنے سے جو آرمی کا ایک اینگل تھا نا, ایک پرسپیکٹو تھا ٹوورڈز لا اینڈ آرڈر اینڈ ٹوورڈز ٹیررزم, وہ بالکل شفٹ ہو گیا تھا. یہ ایک نئی جنریشن تھی. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں راحیل شریف کے ساتھ جتنے کور کمانڈرز تھے, یہ وہ جنریشن تھی جو پارٹیشن کے بعد پیدا ہوئے اور پاکستان میں ہی ان کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوا ہے. مشرف کے وقت ختم ہو گئی تھی وہ ساری جنریشن, مشرف کی جو کور ٹیم تھی اس میں. تو انہوں نے بالکل ایک نیا پرسپیکٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ انف از انف. اور پھر یہ جون 2014 میں, جو آپ کو پتا ہوگا یہ میرے آرٹیکل میں بھی میں نے لکھا ہے کہ پہلے وہی جو ایک ایگزاسٹ کی جاتی ہیں آپشن کہ بات چیت کی, پھر آپ کو پتا ہوگا سمیع اللہ جو تھے وہ کیا مولانا سمیع الحق تھے, ان کو انوالو کیا, لیکن کوئی بات نہیں بنتی تھی. کراچی تھا وہ جلوہ تھا. تو فائنلی انہوں نے کہا کہ ہم 2014 جون میں انہوں نے آپریشن لانچ کیا ریزرو اگر. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں آرمی پبلک اسکول ہو جاتا ہے اور پھر دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. اس وقت پھر آرمی نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر اس کو کلین اپ کیا. نارتھ وزیرستان سے ضرب عضب اسٹارٹ ہوا تھا اس کا, وہ کہہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ضرب عضب کے میں جب نارتھ وزیرستان میں انہوں نے صفائی کی اور وہاں جب انہوں نے اٹیکس کیے تو اس کا بدلہ بھی لیا گیا ہے شاید یہ جو آرمی پبلک اسکول میں ہوا, کیونکہ آپ نے بہت ساری اسکول اس میں دیکھی ہوں گی. تو یہ سارے تانے بانے اس کے بعد پھر آبویسلی راحیل شریف کی قیادت میں, اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے فوجی جو ہیں انہوں نے بڑے سینئر ہمارے افسران جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی,
جنرل رینکس تک بھی. تو دردانہ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر باہر بیٹھا ہوا آدمی یہ جاننا چاہے کہ پاکستان کے اندر جو عسکریت پسند گروہ تھے اس وقت ان کی سٹینڈنگ کیا ہے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, افغان طالبان کی جو عسکریت پسندی تھی اس کو انہوں نے بہت کہنا چاہیے کہ اس کے اندر پناہ ڈھونڈی ہے یا اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ ہم بھی اسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ایسے وقت میں جب امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے, امن پیکٹ جو ہے وہ, پیس پیکٹ جو ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں, سو جو پاکستانی طالبان ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کا جو سلوگن ہے اس کو وہ کہاں تک ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں افغانستان کی سچویشن؟
پاکستانی طالبان کے بھی بہت سارے فیکشن تھے نا, ایک پاکستانی طالبان تھا, پھر پنجابی طالبان تھے, پھر ان کے اندر بہت سارے فیکشن تھے, وہ نکلے تھے, वो अभी देखिए न्यूट्रलाइज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं, देखिए प्रॉक्सीज जो होती है ना, हम लोगों का थोड़ा सा मसला ये है कि हमें प्रॉक्सीज के साथ प्ले आउट नहीं करना आता. प्रॉक्सीज कौन सा मुल्क है जो नहीं रखता? तो जब हमने गुड तालिबान, देखिए हमने हमारी जर्नी बड़ी अच्छी गई है, प्रोग्रेशन है. हमने गुड तालिबान, बैड तालिबान की पॉलिसी खत्म की, ठीक है, हम पे प्रेशर भी था. उसके बाद हमने बहुत सारे तालिबान जो मिसक्रिएंट थे उनको हमने खत्म किया. ये नहीं किया कि हमने उनको जिंदा छोड़ दिया, वो मेरा ख्याल है वो उनको हमने इलिमिनेट किया. हाँ, पाकिस्तान के इल्जाम आपने अभी देखे, बेसिक फैक्ट्स का एक हम पे प्रेशर है या जो भी है, लेकिन हमने अभी जो जितने भी जिन एलिमेंट्स के ऊपर शकों को शुभात थे, जैसे कि हाफिज सईद है, और उनको देखिए किस तरह से अभी इंप्लीकेट किया गया है.
यानी उसके बाद टेररिज्म के अलावा एक्सट्रीमिज्म को भी डील करने की कोशिश की गई है, जहां से नजरियात के सोते फूटते हैं वहां पे भी हाथ डाला गया.
हाँ, वहां अभी हमने काम करना है. मैं आई विल बी देखिए अभी जो हमारा एक लिबरल लिबरल जनरेशन है या लिबरल जो लोग हैं पॉपुलेशन है, उनसे तो हमेशा से एक आउटलुक हमें ऐसी रही है कि दे हैव बीन वेरी ओपन के भाई एक्सट्रीमिज्म. लेकिन हमारी एक मजमू तौर पर एक बात हम यकीनी तौर पर मैं कह सकती हूँ कि लोगों के अंदर एक अवर्जन है, रिपल्जन है कि भी एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म नहीं हो, टेररिज्म नहीं होनी चाहिए. लेकिन एक्सट्रीमिज्म इज अ डिफरेंट थिंग. एक्सट्रीमिज्म ये है कि मजहब के मामले में अभी हमारी जो है ना जिद्दत पसंदी, वो उसको एक तो अभी गेज करने की दोबारा जरूरत है. वो मुझे लगता है कि अगर आप एक आम आदमी से भी बात करें ना, तो वो अभी है, वो पाई जाती है. तो उसके लिए पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन हमारे काम वही जो आपको पता है थोड़े से इतने ज्यादा इंटेंसिव नहीं होते, क्योंकि हम इकोनॉमी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.
और बाकी दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये पहलू बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर और मिशनरी इंटरनेशनल टूरिज्म को या टूरिज्म को पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट को इन्वाइट करते हैं, तो उसको प्रमोट करना चाहते हैं. तो एक बड़ा एक ओपन फ्री एक लिबरल معاشرہ اور ماحول دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جس کا تعلق الٹیمیٹلی معیشت کے ساتھ بھی جڑا ہے.
ایکنالج کرنا ہوگا کہ ہیونگ سیڈ آل دس کہ ابھی بھی پاکستان میں مطلب ایک ایکسیپٹنس انڈیا کے حوالے, انڈیا کے مقابلے میں ابھی بھی بہت ایکسیپٹنس ہے. اور اگر ہم ٹوریزم اگر پاکستان میں آئے گی تو اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی فحاشی لے کر آ رہے ہیں, کوئی وہ ایمان کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں, ایسا میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا, تو جو ہمارے اسپاٹس ہیں, ٹوریزم اسپاٹس ہیں جو ناردرن ایریا ہے, یہ لوگ تو پہلے بھی بڑے براڈ مائنڈیڈ تھے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر ان کو ایک اچھا اگر ماحول ملا دیا جائے گا اور گورنمنٹ جو ان کو سپورٹ کرے گی, تو دے ول گو بیک ٹو دی.
آخری سوال درجان, ہم واپس آتے ہیں ٹیررزم کی جانب. اگر امریکہ افغانستان معاہدہ 29 کو جب ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہوگا اس دن ہو جاتا ہے, تو اس پورے ریجن کے اندر دہشت گردی, انتہا پسندی کے خاتمے اور امن کے امکانات کتنے روشن ہو جائیں گے؟
دیکھیں, اگر تو آئیڈیلزم کی طرف جائیں تو بہت روشن ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن دیر از نتھنگ آئیڈیلزم ہوتی نہیں ہے ان اے ٹرو ورلڈ. بات یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ آئیسس کا ایک فیکٹر جو ہے وہ امریکہ نے اس کو وہاں چھوڑا ہوا ہے, اور امکان یہی ہے کہ اور ایک فلیش پوائنٹ کشمیر ابھی پڑا ہوا ہے وہاں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر تو یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ابھی تک تو طالبان افغانی طالبان نے بھی کہا ہے کہ ہم سول انہوں نے تو لڑائی سے مطلب ایکسیپٹنس ہوئی ہے, تو وہ سارا معاملہ ہوئے. لیکن اگر آئیسس کو وہ انلیش کر دیتے ہیں اور انڈیا کے اندر جو سینسٹیویٹی ہے, تو وہ آئیسس کا آپ کو ابھی شوڈ ناٹ فورگیٹ دیٹ. اور اس کے اوپر اگر آپ کو 2 سال پہلے پاکستان ہی میں ایک کانفرنس ایک سمٹ ہوئی تھی چھوٹی سی, اس میں رشیا بھی تھا, چائنا بھی تھا, پاکستان اور ایک دو اور ممالک کے جتنے بھی سیکیورٹی کے ہیڈس تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, انہوں نے ایک ہرڈل ہوا تھا ان کا, جس میں انہوں نے اس کا پورا روڈ میپ بنایا تھا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول آئیسس. تو دیکھیے دونوں طرف جا سکتی ہے, امریکہ پوری طرح تو جائے گا نہیں, کچھ نہ کچھ تو وہ رہے گا یہاں, لیکن آبویسلی مین فورس ان کی یہاں سے نکل جائے گی اور ان کی جو عمل دخل ہے انٹروینشنل. بٹ وی شوڈ ناٹ فورگیٹ,
لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بلی تنقید بھی ہوئی ہے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پہ, اور ایون افغانستان کی حکومت کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ طالبان کو اس میں انگیج کیا گیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف یا داعش کو قدم نہ جمانے دے, اور اس میں جو ریاست کی اسٹیٹ کی ایفرٹس ہوں اس میں وہ ساتھ دیں گے, تو اس کے ان کی بھی کمٹمنٹ ہے اس کے اندر.
تو اب یہ ہوتا ہے تب تک یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا.
جی بہت شکریہ دردانہ نظم آپ نے.
لیکن یہ تو آبویسلی جب یہ سارے معاہدہ ہو جائے گا, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وی ول بی اوپن ٹو وومن, ہم وہ سارا جو باربیرک ہمارا سسٹم تھا ہم اس طرف نہیں جائیں گے, ہماری ایک اوپن سوسائٹی ہوگی اور ایک سٹیبل ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم اس طرح سے ہم چلیں گے. لیکن انلیس اٹ ہیپنز تو
بہت شکریہ دردانہ نظم, آپ ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے www.urduvoa.com.
پروگرام آپ کی دنیا میں, سامعین آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے اوپر. یہ وائرس درجنوں ملکوں میں اب تک رپورٹ ہو چکا ہے, بعض اطلاعات کے مطابق 40 سے زیادہ ممالک میں, اور اس لمحے جمعرات کو جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو 2700 سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں اور 80,000 سے زیادہ افراد بتائے جا رہی ہیں کہ جو اس کی لپیٹ میں ہیں. امریکہ کے اندر اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور ایک طرف تو انسانی جانوں کو خطرہ ہے, ایک طرف تو اس کا ایک پینک نظر آتا ہے لوگوں میں, لیکن یہ جو پینک ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ مارکیٹ کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں, فائنانشیل مارکیٹس کے اوپر, مالی منڈیوں کے اوپر, اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں. امریکہ میں ایک خبر کے مطابق 1.7 trillion dollars جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہوئے ہیں 2 دنوں کے اندر مارکیٹ سے, اور ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ بہت کچھ جو ہے چائنا بہت بڑا پروڈیوسر اور سپلائر ہے دنیا بھر میں مختلف ممالک کو ان کی نیڈس کے مطابق, تو چونکہ چائنا سے یہ آؤٹ بریک ہوا ہے یعنی وہاں سے یہ وائرس پھیلا ہے, سو وہاں پہ جو کام فیکٹریاں اور جو نہ صرف وہ احتیاطاً خود وہاں پہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے بلکہ جو اس کے خریدار ہیں وہ بھی احتیاط روا رکھتے ہوئے چائنا سے مال نہیں منگوا رہے ہیں, جس کی وجہ سے عالمی معیشت کے اوپر, عالمی منڈیوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. مزید اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز ماہر اقتصادیات, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب ایک تو میں نے ابتدائیہ دیا ہے, یہ کورونا وائرس آپ کے خیال میں اکانومی پہ کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے اور کس انداز میں ڈال رہا ہے؟
شاید کوئی ایسا شعبہ ہو معیشت کا جو اس سے متاثر نہ ہو رہا ہو, کیونکہ یہ محض چائنا ایک دنیا کی اب لارجسٹ بڑی اکانومی ہے امریکہ کے بعد, اور اس کے اوپر جو سپلائی چینز کی ڈیپینڈنس ہے بہت بڑے بڑے مینوفیکچررز کی, بہت بڑے بڑے سروس پرووائڈرز کی, اس میں ظاہر ہے کہ پوری عالمی معیشت کو بری طرح سے ہٹا کے رکھا ہے. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں اس میں صرف محض امریکہ, جو کہ سمجھا جائے کہ بہت دور دراز ہے, اور شاید یہ جو وبائی اثرات ہیں وہ محض ایک فزیکل فینومینن نہیں ہے, بلکہ اس کے جو ہم دوسرے اثرات دیکھتے ہیں, یعنی ایک جو غیر یقینی کی صورتحال ہے, اس کے اندر میں 3 سناریو جلدی سے پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر مثال کے طور پر یہ بہت جلد کنٹرول ہو جاتا ہے, یعنی اگر میں جو چائنیز حکومت کی اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو مارچ کے اوائل میں بہت حد تک کنٹرول کر لیں, تو پھر تو پہلے کوارٹر میں شاید اس کا امپیکٹ آئے, اور آگے جا کر چائنا کے اندر چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 ملین جو ورکرز ہیں وہ ان میں سے بہت زیادہ تعداد جو ہے تقریباً 70% وہ فیکٹری تک خود بھی نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ خود چائنا کے اندر ریسٹرکشنز موومنٹ کے بارے میں پائی جاتی ہیں. تو اگر کہتے اسٹینڈ اسٹیٹ پہ چلی جاتی ہیں اور لمبے عرصے کے لیے چلی جاتی ہیں, تو پھر سیناریو 2 یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بری طرح سے دوسرے کوارٹر کے اندر جا کر بھی معیشت کو جو ہے وہ خراب کرے, اور ایک تیسرا جو بہت ہی خطرناک اس کا اثر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ بہت زیادہ ملکوں میں زیادہ پھیل گیا, اور وہاں کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز, جیسے اس میں پاکستان بھی شامل ہے, وہ اس طرح کی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور وہ اس کے لیے کبھی تیار بھی نہیں ہوں گے, تو پھر اس کے اثرات اور بھی گہرے ہوتے چلے جائیں گے. تو ان تین سیناریوں میں اب چونکہ ایک جو معاشی تجزیہ کار ہے وہ یہ تین چار طرح کے سیناریو غیر یقینی کی صورتحال میں جو ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں. اور جو بڑے بڑے جریدے ہیں, اکانومسٹ ہو, گارڈن ہو اور وال اسٹریٹ جرنل ہو, اس میں آپ مختلف آرا دیکھ رہے ہیں. خود جب میں چائنیز کے جرائد اور رسائل اور ان کے وہ دیکھتا ہوں جہاں ایک کنٹرول میڈیا ہے وہ اس کے بارے میں یہ بیانیہ ہے ان کا کہ شاید ویسٹ میں فیئر زیادہ کریٹ ہو رہا ہے, مگر اندرونی طور پر ہم جیسے 2007 میں بھی ٹریجڈی ہوئی تھی مگر جلد قابو پا دیا تھا, تو اس میں بھی چائنا جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور بہت بڑا ڈینٹ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آئے گا.
لیکن اگر ہم صرف اس کے اکنامک امپیکٹ پہ دیکھیں تو پاکستان کا کتنا انحصار ہے چائنا کے اوپر درآمدات برآمدات میں, اپنی معیشت کی پہیا چلانے میں, اور اگر اس کورونا کی وجہ سے وہ سلو ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو کیا امپیکٹ ابھی تک دیکھا گیا ہے یا آگے چل کے دیکھنے میں آ سکتا ہے؟
چائنا سے دراصل جو اشیاء ہم زیادہ تر منگواتے ہیں اس کا انحصار جو ہے وہ کوئی ایسی ویلیو ایڈڈ چیزوں پہ تو نہیں ہے, مگر جو عام استعمال کی چیزیں چائنا میں ہمارے یہاں جوتوں سے لے کر پلاسٹک برتنوں سے لے کر ہم بہت زیادہ جو ہمارا ان سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ رہا جس کو بھی حالیہ طور پہ ریوائز بھی کیا گیا ہے, تو اس میں دراصل پاکستان نے تو ان پچھلے کئی سالوں میں بہت ہیوی لاسز ہی کیے ہیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کی جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری تھی وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی, کیونکہ چائنا نے یہاں کافی ڈمپنگ بھی کی اور بہت سستا مال بھیجا. تو اس لحاظ سے تو پاکستان کے لیے شاید یہ بنیسی انڈسگائز ہو کہ اگر یہ ٹریڈ کم ہوتی ہے تو جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کی طرف 10-12 بلین ڈالر کا ہے وہ کم ہوگا, کیونکہ آگے ہی پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت بری طرح سے جو تھا اس کا سامنا تھا, مگر اب بہت حد تک اس پہ قابو ہے. مگر اپرچونیٹی کے لحاظ سے شاید پچھلے پروگرام میں مختصر بات ہوئی تھی, مگر میں نے عرض کیا تھا کہ 20 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل کی جو اس وقت گیپ آئے گا چائنا میں پرابلم کی وجہ سے, اب اس میں تین مطلب کنٹینڈر ہے چائنا کے, اس کی بیٹھوں کو پورا کرنے کے لیے بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا. اب بنگلہ دیش اور انڈیا تو اچھا گیئر اپ کر رہے ہیں, مگر پاکستان میں افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ ایک تو ایکسپورٹرز کے انہوں نے ریفنڈ جو ہیں وہ بری طرح ادا نہیں کیے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ حالیہ بجٹ میں جو پچھلا تھا اس میں ان کی انپوٹس پہ بھی 17% جی ایس ٹی لگا دیا گیا تھا جبکہ پہلے وہ زیرو ٹیکس ماڈل پہ تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پروسیڈز آئیں گی تو ہم آپ کو ریفنڈ دیں گے, تو یہ 6-7 ماہ تو آپ کو پتا ہے کہ آرڈر دینے میں, تیار کرنے میں, سپلائی کرنے میں اور ایکسپورٹ ریئلائزیشن میں ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے پھر ان سے ساتھ جو بجلی کے ٹیرس میں کمی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی ریٹروسپیکٹولی واپس لے لیا گیا. تو یہاں حیران کن بات ہے کہ جہاں دوسرے ممالک جو ہے اس کے اندر اپنے اسکوپ کو, اپنے اسپیس کو اور بڑھا رہے ہیں, پاکستان وہ فائدہ نہ انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا, تو اس کو جو ہے وہ ایک اس انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. مگر جو زیادہ تر چائنا سے پروڈکٹس میں کر رہا تھا آتی ہیں اس میں تو پاور پلانٹس تو آپ کو پتا ہے زیادہ تر لگ ہی چکے ہیں. اب جو فیز 2 تھا وہ بہت سلو ڈاؤن اگر ہو جاتا ہے, اور ویسے بھی ہم وہ انڈسٹریل 3 زون نہ بنا سکے اتنی تیزی سے جو چائنیز کو توقع تھی, یا ظاہر ہے کہ وہ ری لوکیشن کے لیے اتنا تو انتظار نہیں کر سکتے تھے, مگر پھر بھی کچھ پیش رفت ہوئی جب سی پیک کا ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ادارہ بنا, کیونکہ کوئی ون ونڈو کی ضرورت تھی, جبکہ پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ فریگمنٹڈ ادارے ہیں اور وہ ایک لائن پہ کبھی ہوتے نہیں. تو جو بیکری کی شکل آ رہی تھی مجھے اس میں خدشہ ہے کہ اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے تو پھر جو فیز 2 کے اندر ہمارا انڈسٹریل کوآپریشن تھا جہاں چائنیز نے ریلوکیٹ کر کے یہاں سے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنی تھی, اس میں پاکستان کو دھچکا لگ سکتا ہے, کیونکہ سی پیک کا فیز 2 ہی ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں کہ ہم چائنیز کی کوآپریشن کے ساتھ تھے, یہاں پہ وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی کر سکتے تھے, جیسے موبائل کے ہم بہت بڑے امپورٹر ہیں, مگر یہاں پاکستان کے اندر اور خیال تھا کہ چائنیز کمپنیز کے ساتھ مل کر مینوفیکچرنگ کی جائے گی اور پھر लोकल मार्केट तो बड़ी है ही है, उसके अलावा फिर वहां से एक्सपोर्ट सरप्लस भी जनरेट होगा, जैसा कि सैमसंग ने किया दूसरे ममालिक में बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश बराह रास्त अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी बहुत फास्ट स्मार्ट फोन की जो है मार्केट में विद द हेल्प ऑफ सैमसंग और अदर आ रहा है।
यानी एक मौका भी इसके अंदर है, जहां पे चैलेंजेस है वहां पे मौका भी है कि अपनी लोकल प्रोडक्ट्स जो है उनको।
तो इसलिए अगर पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा आकर मंदी का मजारा करे तो शायद वो एक बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिसी मेकर से तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कितने तेजी से काम करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सुना तो है, मगर अमली तौर पर जो मेरी बिजनेस नहीं थी जो चाइना के साथ और ममालिक के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे थे वो अभी तक नाखुश है कि रेड टेपिज्म अभी वह मौजूद है और जो बॉर्डर लैक्स हैं वो पूरी तरह रिमूव नहीं हुए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, मुमताज़ माहिर इक्तिसादियात, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी सामिन, प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम। स्पोर्ट्स का ये सेगमेंट है, बात हम करेंगे PSL 5 के ऊपर। काफ़ी जानदार अंदाज में मुकाबले जारी हैं, तमाम टीमें कम से कम दो मैचेस खेल चुकी हैं, कई टीमों ने तीन मैचेस खेल लिए हैं और इस बार भी लाहौर कलंदर जो है वो बॉटम के ऊपर है। एक तो ये बात करेंगे कि लाहौर कलंदर के साथ मसला क्या है, और अभी तक अगरचे बहुत अर्ली है लेकिन PSL का एक और मकसद भी है ना क्रिकेट के फ़रोग के अलावा, कि मुल्क के अंदर से जो नया टैलेंट है वो भी नज़र आए। सो टैलेंट कौन सा जो है वो सामने आ रहा है अभी इनिशियल मैचेस के अंदर, तो बात हम करते हैं। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ एंड मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं जियो टेलीविजन के साथ वाबस्तगी। याहिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया।
थैंक यू वेरी मच सर।
जब हमारे लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो PSL आज थर्सडे है, इस वक्त तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच जारी है, मैं टूर्नामेंट आगे बढ़ चुका होगा, अब तक कैसा जा रहा है आपके ख्याल में ये इवेंट?
ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्या इस पार्क आपको नजर आ रहा है? अब मोइन खान के बेटे की अगर मैं बात करता हूं, आजम खान की, ये खड़ा उनको प्रेस किया जा रहा है, करना चाहिए, परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने हैं वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। और जिस तरह वो पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं और ये उनका इफ आई एम नॉट रॉन्ग दूसरा सीजन है, तो जिस तरह वो खेले हैं आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ऐसे कितने लोगों को मौका मिलता है ये एक मेरा बड़ा सवाल है। बाकी जो खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से हम उम्मीद कर रहे थे कि जनाब उनके लिए ये टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो उनके लिए टोन सेट करेगा, पहला झटका उमर अकमल को लगा जिनके बारे में हम समझ रहे थे कि 8 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ICC वर्ल्ड T20 जब होगा तो वो स्क्वाड में शामिल होंगे अपने उमदा बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से। अहमद शहजाद आज खेल रहे हैं, आज उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, पहले 3 मैचों में तो उनका बल्ला खामोश है, और कामरान अकमल 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। हसन अली बुझे से लग रहे हैं, वहाब रियाज बुझे से लग रहे हैं, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में वो स्पार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, अम्माद को आपने पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा बनाया था खिलाया नहीं, वो जिस पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है कि 2016 में उनको आपने ना खिलाकर जाया कर दिया है। और बैटिंग की अगर आप बात करते हैं तो आजम, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको लगता है कि आजम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टफ है? मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स टू अर्ली
कि क्रिकेट के लिए कुछ स्किल सेट को भी तो अहमियत देनी होगी ना, अगर आज के फिटनेस स्किल्स अप्लाई करते तो इंजमाम और यूसुफ कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल भी ना सकते जो पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन रहे हैं।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और कुछ दिन पहले मोहम्मद हफीज का इंटरव्यू मैंने किया था, उन्होंने कहा एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपकी स्किल्स जो है ना वही सब कुछ होती है। उन्होंने कहा था कि ये जो आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि आपका जो है वो स्पीड कितनी है भागने की, आपका यो-यो का टेस्ट का नंबर क्या है, आपका बीप टेस्ट का नंबर क्या है। उन्होंने कहा कि जब मैं आया था पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में तो इंजमाम उल हक के 10,000 रन थे, शोएब अख्तर हर मैच में जो है 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते थे, मैन ऑफ द मैच लेते थे, यूसुफ हर मैच में 100 करते थे, यूनुस खान मैच जिताते थे, लेकिन आज कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, हर कोई फिटनेस के हवाले से बात करता है।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है और जैसा कहा मोहम्मद हफीज ने उन्होंने वैसा करके भी दिखाया। ठीक है, उनकी टीम जीती नहीं है लाहौर कलंदर, लेकिन उन्होंने ये बताया कि फॉर्म जो होती है वो टेम्पररी होती है, क्लास परमानेंट होती है।
एग्जैक्टली। अब बात है, आपने नाम काफी गिनवाए हैं जिनसे तवक्कु आती है कि शायद वो कहना चाहिए कि फॉलिंग स्टार्स हैं, जिसमें सरफराज भी हैं, अहमद शहजाद भी हैं, हसन अली, आमिर, आसिफ, कि ये कुछ दिखा सकते थे। अब कुछ नया पोटेंशियल, बैटिंग में बड़ा प्रॉब्लम रहा है, इस्लामाबाद ने तो इंटरनेशनल प्लेयर से ही अपनी बैटिंग को मजबूत कर लिया है, और पिशावर से एक लड़का हैदर, उसने स्पार्क शो किया है कि बैटिंग के लिए वहाँ पे पोटेंशियल और जान है अगर उसको ग्रूम किया जाए। उसके अलावा बैट्समैन कुछ नज़र आया, बॉलर्स में मैं कुछ नाम लेता हूँ, जैसे मोहम्मद इलियास हैं, इस्लामाबाद के आकिफ हैं, ये जो नए चेहरे थे, कम अज़ कम आप तो फर्स्ट क्लास को भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नए चेहरे थे और इन्होंने पोटेंशियल अपना शो किया है।
हैदर की आपने बात की, हैदर अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो सबके सामने राइटिंग ऑन द वॉल है। जितने बड़े वो नाम थे उतनी बड़ी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, इंक्लूडिंग कैप्टन रोहेल नज़ीर के साथ। तो यहाँ पर कल उन्होंने किए हैं रन मुल्तान में, मुल्तान के लिए अगेंस्ट पेशावर जर्मी, लेकिन 50 तो नहीं कर पाए वो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 की फाइन, तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाएं हाथ के तेज बॉलर आकिफ हैं, उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया मुझे। ज़ीशान है मुल्तान सुल्तान के, वो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ उनको अगर आप थोड़ा सा जो है वो उनकी ट्विनिंग करें तो वो कुछ बेहतर हो सकते हैं। ये दो खिलाड़ी मुझे नजर आए हैं, बाकी आप कहेंगे तो मुझे इस सहरा में जो है वो दूर दूर तक सर नजर नहीं आ रहे।
सही। अब आते हैं जरा आखिरी इसका जाविया लाहौर कलंदर्स का, लेकिन ये बताएं, ये बदकिस्मती तो नहीं हो सकती जिसका दौरानिया 4 साल तक जाए, ये क्या है लाहौर कलंदर के साथ, क्या हो रहा है?
लाहौर कलंदर के साथ कुछ भी नहीं हो रहा सर, और आप अगर बात करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको लाहौर कलंदर के साथ जितनी मेरी एसोसिएशन है, एफिलिएशन है, आप कहेंगे कि यार हर चीज का आपके पास जवाब है। मैं सिर्फ पिछले सीजन की बात कर देता हूँ, पिछले सीजन में लाहौर कलंदर ने 17 खिलाड़ियों को चेंज किया पूरे टूर्नामेंट में, 17 उनके पास चेंजेस थी ड्यूरिंग टूर्नामेंट, कुछ खिलाड़ी चले गए उनके। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कम चेंज थी वो 7 तब्दीलियां की स्क्वाड में, वो थी कराची किंग्स
जी।
एक तो सबसे बड़ा सवाल, जो टीम 17 चेंजेस कर दे ड्यूरिंग टूर्नामेंट वो क्या कॉम्बिनेशन बनाएगी?
सही।
फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि लाहौर कलंदर क्या सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो जीतना नहीं चाहते? तो मैं शायद इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। आप किस्मत की बात करेंगे, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करूंगा। ग्राउंड में आपको परफॉर्म करना होता है, और ग्राउंड में लाहौर कलंदर, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बात दरअसल ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। लाहौर कलंदर का बहुत सीधा फलसफा है, परफॉर्म करोगे तो हमारे साथ रहोगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो अगले स्टॉप पर बस्ते उतार देंगे। और इसके सामने आपकी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, अजहर अली पाकिस्तान टेस्ट वनडे टीम के कप्तान अब लाहौर कलंदर के साथ नहीं है, उमर अकमल लाहौर कलंदर के साथ नहीं है, प्यार लाहौर कलंदर बड़ा देता है, और वो जो आपने सुना होगा ना कि खिलाओ सोने के निवाले से देखो शेर की निगाह से, तो ये लाहौर कलंदर का फलसफा है। अब जीतते क्यों नहीं है, तो देखें जीतने का जो ताल्लुक है वो आपके हाथ में नहीं है, ये जीत हार अल्लाह ताला के पास है, इसका हक और इसका स्टैक हक। आप ग्राउंड में जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? और आप ये कह सकते हैं कि जो लाहौर कलंदर लास्ट मैच हारा है, तो असद अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, जो लोग क्रिकेट को जानते हैं, मेरे ख्याल से 15-20 रन शॉर्ट थे लाहौर कलंदर के। और जो लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। लेकिन जो मैच उन्होंने मुल्तान के खिलाफ खेला, उसके बाद यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेला, उसके बाद मुझे बड़ा कवी इम्कान है कि इनका कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट फाइनल है। अब जो सबसे बड़ा चीज है वो ये है कि उस्मान खान चिंदवारी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान से उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। अब उनके साथ एक और बड़ा मसला आ रहा है कि उनके जो लीथल बॉलर है हारिफ सोहेल ने 41 रन दे दिए, उस्मान खान चिंदवारी ने 46 रन दे दिए, 2 ओवर में समित पाटिल ने 30 रन दे दिए। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 9.5 ओवर में 120 रन इन बॉलर ने दिए 3 विकेट हासिल करने के लिए। तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे 180 के टोटल को, दुबला हो जाएगा।
आखिरी बात और मुख्तसर, कौन सी टीम इस वक्त आपको अपने कॉम्बिनेशंस, अपना इस वक्त जो उनका टीम का मोमेंटम है उसके मुताबिक PSL 5 के लिए फेवरेट, मोस्ट फेवरेट नजर आ रही है?
अच्छा, हंसने का मूड है आपका, अब मैं जो जवाब दूंगा उस पर आप एक लंबा कहका ना मार।
मुल्तान सुल्तान।
अगर मैं कहूंगा लाहौर कलंदर तो आप यकीनन कहेंगे ना कर यार, लेकिन मैं आपको कहूंगा मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कराची और लाहौर का लग रहा है मुझे कि हो सकता है। और आगे تین میچ جو ہیں لاہور کلندر کے وہ اس بات کا فیصلہ کریں.
میں اس لیے اس پہ نہیں ہنسوں گا کہ میں نے جو سوال فریز کیا تھا اس میں اگر آپ کو ریکال کریں تو میں نے یہ کہا تھا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور کلندر میں مجھے اتنا فرق نظر آتا ہے کہ کچھ جیتنے کی عادت ہے ایک کو ہارنے کی, باقی ٹیموں کے بیلنس میں اور ٹیموں کی اسٹرینتھ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. سو میں اس اعتبار سے آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. تو صرف وننگ ٹریک پہ آنا ہے.
آپ سوچ رہے ہیں اگر لاہور کلندر کا اور کراچی کنگز کا فائنل ہوتا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 22 مارچ 2020 کو, تو آپ انٹینسٹی اس میچ کا فیور اور پاکستان میں کرکٹ کا جو بخار ہے اس کی انٹینسٹی کو آپ ابھی سے فیل کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی, آپ ہمارے ساتھ دیں, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی سامعین, آپ نے یحییٰ حسینی کی گفتگو سنی. اب ذرا آخری جو سوال تھا نا یحییٰ حسینی سے کہ لاہور کلندر کا مسئلہ کیا ہے, اس کے اوپر باقی کچھ کرکٹ پینڈٹس کرکٹ کمنٹیٹر ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. جلال الدین پاکستان کے کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے, پہلی ہیٹرک کرنے والے پاکستان کے بلکہ دنیا کے بالر ہیں ایک روزہ میچوں میں. سو ان کے خیال میں لاہور کلندر کا مسئلہ کیا ہے, آئیے جانتے ہیں.
جو ایک تو بہت پہلے سے ٹیمیں جمع نہیں ہوتی ہیں, بہت کم ٹائم میں ہوتی ہیں, تو اس میں جو بیسیکلی تو اسٹیٹوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, اسٹیٹوں کا اس میں رول بہت اہم ہوتا ہے پلس کوچ کا. دیکھیے عاقب جاوید ٹوٹل فیلئر ہو گیا, اب انہیں چینج کرنا چاہیے تھا. عاقب جاوید کا مقصد ہی ٹیم کو جتانا ہے, جو ہیڈ کوچ ہوتا ہے وہ پرفارمنس کوچ ہوتا ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے کر رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں ہیڈ کوچ کو ٹیم جتانی ہے, وہ فارمولا اس کا بن نہیں پا رہا, تو اس کو چینج کرنا چاہیے تھا. 5 سال بھی اس کو رکھا ہوا ہے, تو وہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے. پلس یہ کہ جو ٹیم کو جیل کرنے کا مسئلہ ہے یا ان کو سپورٹ کرنے کا مسئلہ ہے یا ان کا کمبینیشن بنانے کا مسئلہ ہے, اس میں ٹیم مینجمنٹ فیل ہو گئی ہے. لیکن اگر انڈیویجل پلیئر دیکھیں تو بہت اچھے ڈلیور کرانا جو کام ہے گراؤنڈ میں, کمبینیشن بنا کے موٹیویٹ کر کے پلیئر سے ڈلیور, یہ ہیڈ کوچ کا کام ہے. ہیڈ کوچ فیل ہو گیا مگر یہ اس کو ہٹاتے نہیں ہے, تو اسے ہٹانا چاہیے. دوسرے پھر ہمیں ایک انویٹر قسم کا پلیئر کو کپتان بنا دیا, یہ اس طرح کے فیصلے بھی الٹے سیدھے کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے مینجمنٹ سائڈ پہ بھی, اور خود شیخ صاحب کو بھی جو ہے ان کو بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے مینج کرنا چاہیے, اور پلیئروں کو سپورٹ کرنی چاہیے. جیسے ہم نے گلیڈیٹر کو دیکھا ہے, ان کے جو
ندیم خان جم
بہت ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں پلیئروں کو, ندیم عمر
جم
جو مالک ہے
جی ندیم, بالکل
ڈفرنٹ ہے. تو ان کی ٹیم اتنی اچھی نہ ہو رہی, بعد میں چیمپئن ہو چکی ہے, تو اب انہیں سوچنا چاہیے. مگر یہ ابھی تک ایک ہی آؤٹ آف دا باکس کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, بس ایک سلسلہ جو بنا اسی پہ چل رہا ہے, اور صرف ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتے رہتے ہیں.
جی سامعین, آپ نے جلال الدین صاحب کی بھی رائے سنی. اب ذرا شاہ فیصل کرکٹ کمنٹیٹر ہیں, اسپیشلی پاکستان بھی جا کے کمنٹری کرتے ہیں اور یہاں پہ امریکہ میں بھی کرکٹ کے فروغ اور کرکٹ کمنٹری میں اپنا نام رکھتے ہیں, ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ لاہور کلندر کا مسئلہ کیا ہے اور ٹیمیں کون سی فیوریٹ ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں.
جی جہاں تک لاہور کلندر کی بات ہے, جس طرح کرکٹ میں آپ کہتے ہیں کہ وننگ از اے ہیبٹ اور سیم گوز فار لوزنگ از اے ہیبٹ, کافی لاہور کلندرز کا ایشو یہ رہا ہے کہ وہ جیت سے دور دور ہی رہے ہیں. تو جب وہ ایسی سچویشن میں آتے بھی ہیں جب جیت ان کے بالکل قریب ہوتی ہے, تو وہ جو پریشر ہے اس چیز کا, جو ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے, اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس جیت کو بھی, نزدیک آئی ہوئی جیت کو بھی کھو دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسری ٹیمیں جو جیتنے کی عادی ہوتی ہیں, وہ ہارے ہوئے میچ میں بھی آخر تک فائٹ کرتی ہیں اور میچ کو جیت لیتی ہیں. جہاں تک بات رہی مینجمنٹ کی بھی, ظاہر ہے مینجمنٹ کا تو فلا ہے کہ 5 سال آپ کی ٹیم اگر 4 سال آخری نمبر پہ فنش کر رہی ہے تو کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے, آپ اس کو ایسے ان اٹینڈڈ چھوڑ نہیں سکتے. اور کلیئرلی جو پرابلم شروع ہوتی ہے وہ ڈرافٹ سے شروع ہوتی ہے, ڈرافٹ میں جو پکس ہوتی ہیں وہ کافی الوجیکل ہوتی ہیں اور کمبینیشن اس طرح اس وقت بن نہیں پاتا. یہ لاہور کلندر کی جو 2-3 وجوہات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو پک ہے ظاہر ہے وہ ڈرافٹ کے وقت اتنا زیادہ ہوم ورک نہیں کرتے, اور پھر جب آپ مسلسل اس ہار کے گرداب میں پھنسے ہوں تو جو 50-50 چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہی جاتی ہیں, جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کانفیڈینس لیول سے, اور جو کہ ظاہر ہے وہ مینجمنٹ سے ٹیم میں آتا ہے اور ٹیم سے پھر ان کی پرفارمنسز میں آتا ہے. تین بالر تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارس جو ہے ایکسپیکٹیشن کے برڈن کے نیچے کرمبل کر گئے, حالانکہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ سیزن وہ کھیل کے آئے ہیں بگ بیش کا. تو جب تک میرے خیال سے لاہور کلندر اپنی مینجمنٹ میں فریشنیس نہیں لے کے آئے گی, فریش آئیڈیاز اور فریش پلانز نہیں لے کر آئیں گے,
क्योंकि जो मुझे रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं कि जो उनकी जो ट्रेनिंग है, जो उनकी जो मैच प्रेपरेशन है, उसमें जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है और एंड रिजल्ट टीम को सफ़र करना पड़ता है।
और सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असद हसन को इजाज़त दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं।